दानियेल अध्याय 11। मादी वंश के राजा दार्यावेश के शासन के पहले साल में मैं उसको समर्थन देने और उसके बचाव के लिए खड़ा हुआ। दक्षिण और उत्तर के राजा, अब मैं तुमको सच्ची बात बताता हूं, पारस में 3 और राजाओं का उदय होगा और उसके बाद एक चौथा राजा होगा जो दूसरे सब राजाओं से बहुत अधिक धनी होगा। जब वह अपने धन से शक्ति प्राप्त कर लेगा तब वह सब लोगों को यावन राज्य के विरुद्ध भड़काएगा। तब एक पराक्रमी राजा का उदय होगा जो बड़ी शक्ति से राज्य करेगा और उसे जो अच्छा लगेगा वही करेगा। उसके उदय होने के बाद उसका राज्य टूट जाएगा और चारों दिशाओं में बट जाएगा। यह उसके संतानों के पास नहीं जाएगा और ना ही उसके शक्ति का प्रभाव उस राज्य में होगा, क्योंकि उसका राज्य उससे छीनकर दूसरों को दे दिया जाएगा। दक्षिण का राजा शक्तिशाली हो जाएगा, परंतु उसका ही एक सेनापति उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और अपने स्वयं के राज्य पर बड़े शक्ति से शासन करेगा। कुछ सालों के बाद वे सहयोगी बन जाएंगे। दक्षिण के राजा की बेटी उत्तर के राजा के पास एक संधि करने के लिए जाएगी, परंतु उसके पास उसके राज्य की शक्ति ना रहेगी और ना ही उत्तर के राजा के पास कोई शक्ति बचेगी। उन दिनों दक्षिण के राजा की बेटी को उसके शाही रक्षकों और उसके पिता और उसकी मदद करने वाले सहित धोखा दिया जाएगा। उसके परिवार का एक जन उसकी जगह में उठ खड़ा होगा। वह उत्तर के राजा के सेना पर आक्रमण करेगा और उसके किले में प्रवेश करेगा। वह उनसे लड़ेगा और विजयी होगा। वह उनके देवताओं को, उनके धातु की मूर्तियों को और उनके चांदी एवं सोने के बहुमूल्य पात्रों को जब्त कर लेगा और अपने साथ मिस्र देश ले जाएगा। कुछ वर्षों तक वह उत्तर के राजा को अकेला छोड़ देगा। तब उत्तर का राजा दक्षिण के राजा की सीमा का अतिक्रमण करेगा, परंतु अपने ही देश को लौट जाएगा। उसके बेटे युद्ध की तैयारी करेंगे और एक बड़ी सेना इकट्ठा करेंगे जो न रोके जा सकने वाले बाढ़ के समान तेजी से आगे बढ़ेंगे और लड़ाई को उसके किले तक ले जाएंगे। तब दक्षिण का राजा क्रोधित होकर आगे बढ़ेगा और वह उत्तर के राजा से लड़ाई करेगा और उत्तर का राजा एक बड़ी सेना खड़ी करेगा, परंतु वह हार जाएगा। जब इस बड़ी सेना को हरा दिया जाएगा तब दक्षिण के राजा मन घमंड से भर जाएगा और कई हजार लोगों को मार डालेगा, तो भी वह विजयी बना ना रह सकेगा, क्योंकि उत्तर का राजा एक दूसरी सेना खड़ी कर लेगा जो उसके पहले की सेना से बड़ी होगी और कई सालों बाद वह पूरी तैयारी के साथ एक बड़ी सेना को लेकर आगे बढ़ेगा। उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण के राजा के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। तुम्हारे अपने लोगों के बीच जो हिंसक प्रवृत्ति के हैं वे इस दर्शन के पूर्ति में विद्रोह करेंगे, किंतु वे सफल ना होंगे। तब उत्तर का राजा आकर सैनिकों का घेरा डालेगा और एक किला वाले शहर पर कब्जा कर लेगा। दक्षिण की सेना में विरोध करने की शक्ति ना होगी, और तो और उनके सबसे अच्छे सैन्य दलों के पास भी सामना करने की शक्ति ना होगी। आक्रमणकारी जैसा चाहेगा वैसा करेगा, कोई भी उसके सामने ठहर ना सकेगा। वह अपने आप को उस सुंदर देश में स्थापित करेगा और उसके पास उसे नाश करने की शक्ति होगी। वह अपने सारे राज्य की शक्ति के साथ आने की ठान लेगा और वह दक्षिण के राजा के साथ एक संधि करेगा और उसके राज्य को जीतने के लिए उस राजा को अपनी एक बेटी विवाह में देगा, परंतु उसकी योजना सफल ना होगी या उससे उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। तब वह अपना ध्यान समुद्र तटों पर लगाएगा और उनमें से बहुतों को अपने अधिकार में कर लेगा, परंतु एक सेनापति उसके अहंकार का अंत कर देगा और उसके अहंकार के अनुसार उसे बदला लेगा। इसके बाद वह अपने ही देश के किलों की ओर मुंह मोड़ेगा, किंतु वह लड़खड़ा कर गिरेगा और उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तब जो उसकी जगह लेगा वह राजकीय वैभव को बनाए रखने के लिए कर इकट्ठा करने वाला भेजेगा फिर भी कुछ ही सालों में वह नाश हो जाएगा, पर उसका विनाश क्रोध में या युद्ध में ना होगा। उसके जगह को लेने वाला एक तिरस्कृत व्यक्ति होगा, जिसे राज सत्ता से सम्मान ना मिला होगा। जब लोग सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, तभी वह राज्य पर आक्रमण करेगा और षड्यंत्र करके उसे अपने कब्जे में कर लेगा। तब एक बड़ी सेना उसके सामने से पलायन कर जाएगी। इसे और वाचा के एक राजकुमार को नष्ट कर दिया जाएगा। उस राजकुमार के साथ एक समझौता होने के बाद वह छल करेगा और सिर्फ थोड़े ही लोगों के साथ वह शक्तिशाली हो जाएगा। जब धनी राज्य सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, तभी वह उन पर आक्रमण करेगा और ऐसी सफलता प्राप्त करेगा जैसी ना तो उसके बाप दादों और ना ही उसके पूर्वजों ने प्राप्त की थी। वह लूटी और छीनी गई चीजों और संपत्ति को अपने अनुयायियों के बीच बांट देगा। वह किलों को जीतने के लिए षड्यंत्र करेगा, पर सिर्फ थोड़े समय के लिए। एक बड़ी सेना लेकर वह दक्षिण के राजा के विरुद्ध अपनी शक्ति एवं साहस लगा देगा। दक्षिण का राजा भी एक बड़ी और शक्तिशाली सेना लेकर युद्ध करेगा, किंतु उसके विरुद्ध रचे गए षड्यंत्र के कारण वह ठहर ना सकेगा। जो राजा के द्वारा दिए गए भोजन को खाया करते थे, वे ही उसे नाश करने की कोशिश करेंगे। उसकी सेना भगा दी जाएगी और बहुत सारे लोग युद्ध में मारे जाएंगे। दोनों ही राजा अपने मन में बुरी बातें रखकर एक ही मेज पर बैठेंगे और एक दूसरे से झूठ बोलेंगे, जिससे कोई फायदा ना होगा, क्योंकि ठहराए गए समय पर अंत आ जाएगा। उत्तर का राजा बहुत संपत्ति के साथ अपने देश को लौट जाएगा, परंतु उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध लगा रहेगा। वह इसके विरुद्ध कार्यवाही करेगा और तब वह अपने देश लौट जाएगा। निर्धारित समय पर वह फिर से दक्षिण पर आक्रमण करेगा, परंतु इस समय परिणाम पहले से अलग होगा। पश्चिमी समुद्र तट के जहाज उसका विरोध करेंगे और वह हिम्मत हार जाएगा। वह लौटेगा और पवित्र वाचा के विरुद्ध अपना गुस्सा दिखाएगा। वह लौटेगा और उन पर कृपा करेगा जो पवित्र वाचा को छोड़ देंगे। उसकी सशस्त्र सेनाएं मंदिर के किले को अपवित्र करने के लिए आगे बढ़ेंगी और प्रतिदिन चढ़ाए जाने वाला बलिदान बंद कर दिया जाएगा। तब वे घृणित वस्तु की स्थापना करेंगे जो उजाड़ का कारण बनता है। लुभावने शब्दों से वह उनको भ्रष्ट करेगा जो वाचा को तोड़ दिए होंगे, पर जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं, वे दृढ़ता से उसका विरोध करेंगे। वे जो बुद्धिमान हैं, बहुतों को समझाएंगे। हालांकि कुछ समय के लिए वे तलवार से मारे जाएंगे या जला दिए जाएंगे या पकड़ लिए जाएंगे या लूट लिए जाएंगे। जब वे गिरेंगे तो उन्हें बहुत थोड़ी मदद मिलेगी और बहुत लोग जो ईमानदार नहीं हैं उनमें शामिल हो जाएंगे। बुद्धिमान लोगों में से कुछ लड़खड़ाएंगे ताकि अंत समय के आने तक उन्हें स्वच्छ, शुद्ध और दाग रहित किया जाए, क्योंकि अंत निर्धारित समय पर होगा। अपने आप को उन्नत करने वाला राजा। राजा जैसा चाहेगा वैसा करेगा। वह अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा करेगा और देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध अनसुनी बातें कहेगा। वह तब तक सफल होता रहेगा जब तक कि कोप का समय पूरा ना हो जाएगा, क्योंकि जो ठहराया गया है वह अवश्य पूरा होगा। वह ना तो अपने पूर्वजों के देवताओं के प्रति कोई सम्मान दिखाएगा और ना ही वह स्त्रियों की इच्छा की चिंता करेगा और ना किसी देवता का सम्मान करेगा, पर वह अपने आप को उन सबसे ऊपर ठहराएगा। उनके बदले वह किलों के एक देवता को सम्मानित करेगा, एक ऐसा देवता जिससे उसके पूर्वज भी अनजान थे। वह उस देवता का सम्मान सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्नों तथा कीमती उपहारों से करेगा। वह एक विदेशी देवता की सहायता से सबसे शक्तिशाली किलों पर आक्रमण करेगा और वह उन्हें बहुत सम्मानित करेगा जो उसे राजा स्वरूप स्वीकार करेंगे। वह उन्हें बहुत से लोगों के ऊपर शासक नियुक्त करेगा और एक दाम लेकर भूमि को वितरित करेगा। अंत के समय में दक्षिण का राजा उसको युद्ध में लगाए रखेगा और उत्तर का राजा भी रथों, घुड़सवारों और एक बड़े पानी जहाज के बेड़ों के साथ उस पर आक्रमण करेगा। वह बहुत से देशों पर आक्रमण करेगा और बाढ़ के पानी की तरह उनमें से होता हुआ निकल जाएगा। वह सुंदर देश पर भी आक्रमण करेगा, बहुत से देशों का अंत हो जाएगा, परंतु एदोम, मोआब और अमोन के अगुओं को उसके हाथ से बचाया जाएगा। वह कई देशों पर अपनी शक्ति का विस्तार करेगा, मिस्र देश भी ना बचेगा। वह मिस्र देश के सोने और चांदी के खजानों और सब बहुमूल्य चीजों को अपने अधीन कर लेगा और लीबिया तथा कूश देशवासी उसकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। किंतु पूर्व और उत्तर दिशाओं से आने वाले समाचार को सुनकर वह बेचैन हो जाएगा और बहुत क्रोधित होकर वह बहुतों को नाश करने और उनका अस्तित्व मिटाने को निकल पड़ेगा। वह अपना राजकीय तंबू समुद्र और सुंदर पवित्र पर्वत के बीच खड़ा करेगा तो भी उसका अंत हो जाएगा और कोई भी उसकी सहायता करने नहीं आएगा।